आप सुन रहे हैं फीवर पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचटी स्मार्टकास्ट।
एक अधूरी कहानी,
एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ।
जब जब इस कॉलेज की लाइब्रेरी के दरवाजे पे ये आवाजें सुनाई देती थीं, तब तब अंदर एक ऐसी मौत होती थी जिसको समझ पाना नामुमकिन होता था। बंगाल के हुगली जिले का एक कॉलेज है जहां के मेधावी छात्रों में महान बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र का नाम भी शुमार किया जाता है। ये कॉलेज करीब करीब 200 साल पुराना है और किसी पुराने जमाने के महल से कम नहीं। इसी कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, बहुत ही बड़ा कमरा। शायद किसी भी कॉलेज में इतने बड़े कमरे में लाइब्रेरी ना हो। बड़ी ही मेहनत से इसमें एक एक अक्षर के हिसाब से अल्फाबेटिकली किताबें सहेज के रखी गई थी। कॉलेज में आने के पहले कईयों का कहना था कि यह लाइब्रेरी हॉन्टेड है और सरकार ने इसे सील कर रखा है, क्योंकि अंदर सब कुछ जितनी भी बार ठीक करके रेनोवेशन किया गया है, तब तब या तो किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है या तो सब कुछ तहस नहस हो गया। आखिरी बार तो यही सुना था कि देश में कहीं सांप्रदायिक दंगे भड़के थे और उसके अगले ही दिन पूरी लाइब्रेरी की हर एक किताब के हजारों टुकड़े हुए और वहां के बेहद कट्टर लाइब्रेरियन की लाश उन्हीं किताबों के टुकड़ों के नीचे दफन पाई गई थी। इसी वारदात के बाद लाइब्रेरी सरकार ने सील कर दी, लेकिन उसी कॉलेज के हर एक नेक दिल और पढ़ाई में अच्छे छात्र का यही कहना था कि ये सब तो अफवाहें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सन 1992, सर्दियों का मौसम था। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ी थी इस इलाके में। अंधेरा होते ही कोहरा छा जाया करता था। हॉस्टल में ज्यादातर बच्चे अपने अपने घर गए हुए थे। कुछ गिने चुने लड़के ठहरे थे, उन्हीं में से एक था राणा। अपने गांव का इकलौता था आज तक जिसने कॉलेज तो दूर स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करी हो, और वजह बस इतनी थी कि वह सचमुच पढ़ना चाहता था। इसीलिए चावल की खेती करने वाले उसके वालिद उसे पढ़ाना चाहते भी थे और वो खुद भी अक्लमंद होने के साथ साथ मेहनती भी था। और ये उसका आखिरी साल था। पिछले दोनों साल वो फर्स्ट आया था कॉलेज में और इस साल भी छुट्टियों में गांव ना जाकर यहीं रह के पढ़ाई करने का फैसला किया था उसने। आज की रात उसने लाइब्रेरी में ही बिताने की सोची थी। बहुत सारी पढ़ाई करने की सोच रखी थी उसने। फिलॉसफी का स्टूडेंट था। मोटी मोटी 3-4 किताबें उठाई और एक एक करके पढ़ना शुरू कर दिया। साथ में टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, एक बोतल मिट्टी का तेल, एक बोतल पानी, 2 बिस्किट के पैकेट और मच्छर भगाने वाली क्रीम और अगरबत्ती सब तैयार रखा था उसने, जिससे न तो मच्छर परेशान करे, ना ही बत्ती चली जाने पे पढ़ने में दिक्कत हो और ना ही भूख प्यास से कोई खलल पड़े। राणा पहली किताब के शायद 30वें या 35वें पन्ने पे रहा होगा जब एक आवाज उस शांत वातावरण को चीरती हुई निकली। राणा ने तो कोई पन्ना पलटा नहीं। लाइब्रेरी में कोई और था क्या? राणा ने ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, होगा कोई किसी कोने में पढ़ता हुआ। वो अपना पढ़े, मैं भी अपना पढ़ता रहूंगा, यही सोच के राणा पढ़ता रहा। 4 से 5 पन्ने पढ़े होंगे उसने जब एक बार फिर राणा अभी भी पढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद अब राणा जोर से चिल्लाया,
ए भाई, शांति से पढ़ते थे तो।
राणा ने चिल्ला के कहा कि शांति से पढ़ाई करने दे उसे, और उसके चिल्लाने के जवाब में एक और जोरदार आवाज हुई। राणा ही क्या, कोई भी होता तो इतनी जोर की आवाज से घबरा जाता। राणा पहले तो घबराया, लेकिन फिर सोचा पता नहीं किताब उतारने के चक्कर में कहीं शेल्फ किसी स्टूडेंट पे तो नहीं गिर गई। वो आवाज की ओर भागा और जाकर देखा, सचमुच एक पूरी किताब की शेल्फ गिरी हुई थी। और नीचे से खून की धार बह रही थी। लेकिन बिखरी हुई किताबों के ढेर के नीचे कोई दिख नहीं रहा था। राणा बाहर भागा लाइब्रेरी असिस्टेंट और गार्ड को बुलाने के लिए, और 5 ही मिनट में उन्हें ले भी आया। आके देखा, कोई शेल्फ नहीं गिरी थी, कहीं खून नहीं था, और सामने एक कुर्सी और मेज रखी थी जिसपे एक मोटी सी किताब खुली हुई रखी थी, जैसे कोई उसे पढ़ रहा हो। राणा उस खुली किताब को बंद करने के लिए आगे बढ़ा, तो उससे पहले ही लाइब्रेरी असिस्टेंट ने राणा को पहले तो डांटते हुए रोक दिया, लेकिन फिर देखा कि राणा ने कोई नशा नहीं किया है। वो ठीक था, बात आगे ना बढ़े इसके लिए उसे 2 किताबें देके लाइब्रेरी से वापस उसके रूम भेज दिया। वो खुली किताब वैसी की वैसी उसी टेबल पे रखी रही, करीब 100 साल पुरानी फारसी में लिखी हुई बाबरनामा। राणा अपने रूम में आके पढ़ने की कोशिश करने लगा। रूममेट घर गया हुआ था तो राणा अकेला ही था। ऐसा वाकया होने की वजह से लगातार उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो भी उसने देखा वो क्या था, ऐसा हो कैसे सकता था। खैर, पढ़ते पढ़ते राणा की आंख लग गई और वो कुर्सी पे बैठे बैठे मेज पे सर रखकर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन फिर उसी आवाज से वापस राणा की नींद टूटी। उठ के हड़बड़ा के देखा तो वो अपने रूम में नहीं था, लाइब्रेरी में ही पढ़ते पढ़ते सो गया था। आंख पोंछी और 2 घूंट पानी पिया ही होगा उसने जब राणा ने पानी की बोतल रखी और सीधे उसी ओर नजर दौड़ाई जहां सपने में शेल्फ गिरी थी। राणा को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वही शेल्फ हिल रही थी, और उसका हिलना धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे हौले हौले धक्के मार के गिराना चाह रहा था। राणा ने पहले लाइब्रेरी असिस्टेंट की ओर देखा तो उसकी कुर्सी खाली थी। नजर इधर उधर दौड़ाई तो देखा दरवाजे के बाहर सीढ़ी पे बैठा बीड़ी पी रहा था। लेकिन इधर आखिरकार हिलते हिलते शेल्फ गिर ही गई। राणा मूर्ति की तरह उधर देखता हुआ खड़ा रह गया। असिस्टेंट दौड़ा दौड़ा आया तो देखा शेल्फ गिरी हुई थी। पलट के राणा से असिस्टेंट पूछने ही वाला था कि क्या हुआ यहां, कि तभी किताबों से भरी सारी 50 शेल्फ्स जोर जोर से हिलने लगी, और राणा और असिस्टेंट दोनों हक्के बक्के इधर उधर देखते रहे। शायद भूकंप आ रहा था, और दोनों यही सोचकर एक एक बेंच के नीचे एकदम उकड़ू होकर के बैठ गए। अगर भूकंप होता तो सब कुछ ऐसे ही हिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ शेल्फ्स हिल रही थी, और हिलते हिलते सारी की सारी शेल्फ्स एक एक करके थम थम गिरती रही, और राणा और लाइब्रेरी असिस्टेंट ये सब देखते रहे। आखिरकार सारी आवाजें बंद हुई तो दोनों ने बेंचेस के नीचे से निकल के देखा। सारी शेल्फ्स गिरी हुई थी और हजारों किताबें बिखरी पड़ी थी, और उनमें से कुछ फट चुकी थी। राणा चारों ओर देख ही रहा था जब राणा ने पलट के उसी कुर्सी और मेज की ओर देखा। टेबल पे एक फारसी में लिखी हुई बाबरनामा सचमुच खुली हुई रखी थी, जैसे कोई उसे पढ़ रहा था, और यहां जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और पूरी लाइब्रेरी का यही एक हिस्सा था जहां जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राणा को अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसके आसपास कोई और था। वो सोच ही रहा था जब असिस्टेंट की आवाज गूंजी,
ऐ राणा, इबार बोई गुलो नहीं ये रूम में जा तो हमें बाड़ी जाए भाई।
वो राणा से बोला कि अब वो अपने घर जाना चाहता था, और किताबें लेकर राणा अपने रूम जाके पढ़ाई कर ले बाकी। राणा ने पलट के देखा तो असिस्टेंट अपनी कुर्सी पे बैठा था, उसके बगल में नहीं था। सारी शेल्फ्स ठीक ठाक थी, सारी किताबें अपनी जगह पे थी, और सब कुछ ठीक था। राणा ने चुपचाप किताबें उठाई और अपने कमरे में जाने को निकल पड़ा। चलते चलते वो कुछ ही दूर गया था जब उसे याद आया कि उसने किताबों के लिए रजिस्टर पे साइन नहीं किया था। राणा पलट के वापस लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा तो एक के बाद एक पन्ने पलटने की जोर की आवाजें सुनाई देने लगी। राणा जैसे जैसे लाइब्रेरी के पास पहुंचता गया पन्ने और जल्दी जल्दी और तेज आवाज के साथ पलटने लगे और आखिरकार लाइब्रेरी के दरवाजे पे पहुंच के राणा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने लाइब्रेरी के कम 150 किलो के शीशम के दरवाजे पे करीब 25 किलो का एक ताला झूल रहा था जिसमें चाबी वाली जगह पे सरकारी सील लगी हुई थी और दरवाजे पे एक सरकारी कागज चिपका हुआ था जिसपे बांग्ला और अंग्रेजी में लिखा था, सरकार द्वारा ये सूचना जारी की जाती है कि इस ग्रंथागार का ताला खोलने या तोड़ने की कोशिश कानूनन जुर्म है। कुछ अजीबोगरीब और परालौकिक गतिविधियों के चलते इस ग्रंथागार को छात्रों और आम जनता के लिए असुरक्षित घोषित करते हुए इसे सील किया जाता है। राणा ने यह पढ़ना खत्म किया और न जाने क्यों उसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे वो किसी को शुक्रिया कहना चाहता हो। उसने पता नहीं क्या सोच के एक खिड़की के कांच से अंदर झांका तो देखा पूरी लाइब्रेरी में बस एक लाइट चल रही थी, उसी टेबल की ऊपर वाली जहां बाबरनामा रखी थी। और राणा की आंखों के सामने एक पन्ना थोड़ा सा एक कोने से मुड़ा और फिर पलट गया।
आप सुन रहे थे
एक अधूरी कहानी,
कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HDSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com।